पिछली दफा आपको बताया था कौन से होते हैं एहसान करने वाले। लास्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा था कुछ याद है? क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या टॉपिक है हमारा जो आजकल चल रहा है? और मैंने आपको बताया था यही चलेगा अभी ऑलमोस्ट इस सूरा के आखिर तक। जंगे ओहद का, ठीक है, गजवाए ओहद। अच्छा, अब गजवाए ओहद से हमें क्या करना भाई? हो गई जंग, हो गई अब खत्म। हम क्या इससे क्या कर सकते हैं? जो भी हुआ सो हुआ। असल में कोई भी कुराने पाक की बात ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही फालतू हो। कुरान कयामत तक के लिए है। इसकी बातें हिकमत भरी हैं, इनमें लेसन्स हैं। चाहे जंग मैदाने जंग में हो या जिंदगियों की जंगें लड़ी जाएं, घरों में जंगे हैं, आपकी जॉब्स पे आप एक जंगे लड़ते हैं, आप अपने माशरे में एक जंग लड़ रहे होते हैं, हक और बातिल के मार्के तो रहते हैं। देखें, ये सिर्फ ये नहीं कि कोई वो तलवारें लेके ही मैदान में खड़ा है तो वो ही जंग कर रहा है। क्या हमारी जिंदगियों में नहीं जंगे जारी होती? कभी किसी में महाज पे हम लड़ रहे होते हैं, कभी किसी महाज पे, बुराइयों के खिलाफ, बातिल के खिलाफ, फहाशी के खिलाफ, शिर्क के खिलाफ, बिद्दतों के खिलाफ, कितनी जंगें हैं जो हम लड़ रहे होते हैं अपनी जिंदगी में। अब हाँ, नौयत अलग होती, सारे तलवारें लेके लड़ रहे होते हैं, लेकिन जंगे जारी हैं। अब इन जिंदगी के महाजों पे लड़ी जाने वाली जंगों में कभी शिकस्त भी होती है, उतार चढ़ाव भी आते हैं, कभी जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसी मसाइब आ जाती हैं, ऐसे मसाइल आपको फेस करने पड़ते हैं, ऐसे जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिनमें आप को शिकस्त हो रही होती है, आप फील करते हैं कि मैं तो हार गई। वहां पे फिर ऐसी जगह पे सपोर्ट कहाँ से लेंगे? कहाँ से उठ खड़े होने का हौसला आपको मिलेगा इस कुरान से? कहाँ से आपकी हिम्मत बंधेगी इस कुरान से? जब भी हालात नामुवाफिक हों, नेगेटिव हों जिंदगी में, तो ओहद वालों को याद कर लें। इतनी बड़ी नेगेटिविटी सामने आई थी, फिर कैसे वो खड़े हुए, कैसे लोगों के रिएक्शंस हुए, क्या रिएक्शन करना सही है और क्या गलत है, ये पता चलेगा। तो ये बातें हमें इन सब चीजों का सिखाती हैं। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा उन लोगों के बारे में जो मुत्तकी हैं, वो कैसे होते हैं, जिनके लिए जन्नत है वो कैसे होते हैं। हमने पढ़ा वमन यग़फिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और एक उसके साथ की मैचिंग दुआ। कई कई चीजें ऐसी होती है ना, उसके साथ कोई मैचिंग दुआ आ रही होती है, तो इसके साथ की एक मैचिंग दुआ मैं आपको बताना चाह रही हूँ जो आप लिख सकते हैं। और ये दुआ हम मांगते भी हैं अपनी नमाजों में जिनको आती है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कथीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ाग़फिर ली मग़फिरतन मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफूर रहीम। तो ये दुआ भी, उस दुआ में भी क्या है मैचिंग, किस लिए है कि उस दुआ में भी क्या है, वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। अल्लाह गुनाहों को कोई माफ नहीं कर सकता मगर तू, और यहाँ पे भी यही बात कही गई। और फिर हमने गुस्से पे काबू पाना, लोगों को माफ करना, खर्च करना, इस बारे में पढ़ा। अगर कोई गलती हो जाए तो उसको मान लेना और उसके ऊपर फौरन अल्लाह से तौबा करना। ये हैं ट्रेट्स उन लोगों के जो मुत्तकी होते हैं और जिनके लिए जन्नत है। तो आपने गुस्से को काबू करने की कुछ कोशिश की, किसी को माफ किया। इसी तरह हमने ये पढ़ा कि हम किस तरह इस बात को फेस करें कि जिस वक्त कोई कोई मुश्किल आती है, कोई गम आता है, तो इसके पीछे जो बात है, क्यों आया, ये क्यों आया, और हम इसके ऊपर बहुत अपने अंदर महसूस करते हैं, एक उबाल आता है। अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं जन्नत में भेज देना, ये तुम्हारी टेस्टिंग तो होगी इस दुनिया में, अल्लाह ताला ने तो इसको बाजे करना, ये मुश्किल हालात में ही हो सकता। और ये सब इसीलिए हो रहा है कि अल्लाह पाक करे, खालिस करे, और आज भी ये बात आएगी। और अगर तुम्हें कोई जख्म पहुंचता है तो किसी और को भी कुछ पहुंचा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि ओ हम तो बड़ी मुश्किलात में रहते, देखो इन काफिरों को, ये कितने मजे में रह रहे हैं ना। नहीं, आपको क्या पता उनकी जिंदगियों में भी क्या क्या चल रहा है। ये दिन है, अल्लाह उलट था फेरता रहता है। तो मतलब ये नहीं, कभी किसी नेक इंसान को तो कोई गम आ ही नहीं सकता। लोग अक्सर इस चीज को भी ना बहुत ही नेगेटिव लेते हैं। अगर कोई बेचारा नेक बनी, कोई उसे कोई कोशिश कर ही रहा है, कोई अल्लाह के दीन पे चलने में अपने आप को लगा रहा है, खपा रहा है, तो लोग सोचते हैं अब इसके ऊपर तो कोई गम नहीं आना चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई मुसीबत आ गई ना, इसका मतलब यही है कि ये हाँ तो ये इसके अंदर कोई खराबी है, जभी तो आई है, या तो ये कुछ कोई गलती इसने जरूर की है। तो ऐसा किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आज भी हमें इतनी प्यारी टिप्स मिलती हैं, इतनी प्यारी रहनुमाई मिलती है। अल्लाह ताला किस तरह गाइड करता है इंसान को, जो कुरान से जुड़ा होता है। देखें कैसे अल्लाह ताला मरहम रखता है उसके जख्मों पर, आज आप देखेंगे इन आयात में। और फिर से याद कर लें, अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक गज़वाए उहद को, तो आपको पढ़ना चाहिए। तजल्लियात नबुवत से एक दफ़ा आप निकालें उसको, और एक दफ़ा पढ़ें कि वो क्या हालात थे जिनमें ये सारा, ये जो आयात नाजिल हुई हैं, इनका बैकग्राउंड जो था, ताकि आपके सामने थोड़ा वो सारा सीन आ जाए। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि उहद में मुसलमानों को फतह मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद वो लोग जो जबले रमात पे थे, उन लोगों ने सोचा, जब उन्होंने देखा कि माले गनीमत लोग जमा कर रहे हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि बस जंग खत्म हो गई है, अब हम भी उतर के जाके हम भी माले गनीमत समेटते हैं। उनके जो लीडर थे अब्दुल्ला बिन जुबैर, उन्होंने मना भी किया कि मत जाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहीं जमने का हुक्म दिया, चाहे शिकस्त हो जाए, चाहे परिंदे उनकी बोटियां नोच लें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि यहीं पे आपने रहना है, आपने यहाँ से हटना नहीं। वो कहने लगे नहीं, वो तो उस लिए कहा था कि जिस वक्त जंग हो रही, फिर जंग ही खत्म हो गई है, तो आप किस लिए हमें कह रहे हैं, अब हम तो जा रहे हैं। तो 40 लोग जो थे वो उतर गए, सिर्फ 10 लोग वहां पे रहे। और इस बात को जब हजरत खालिद बिन वलीद, उस वक्त तो मुशरिक ही थे, तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, वो आए सबसे पहले, तो उन्होंने जो जबले रुमाद के ऊपर वो सहाबा थे जो जम के खड़े हुए थे, पहले तो उनको शहीद किया, क्योंकि वो तो बेचारे 10 थे, ये 200 थे घुड़सवार थे, इनका मुकाबला वो कहाँ से करते। तो उनको पहले शहीद किया, फिर उसके बाद वो वहां से उन्होंने जो मुसलमानों पे पीछे से आके हमला किया, और उन्होंने अपने फिर काफरों को भी आवाजें दे दी कि तुम भी वापस आ जाओ, वो उन्होंने भी आके हमला कर दिया, वो जो भागे जा रहे थे वापस, वो भी वापस आ गए। तो अब आप सोचें कि मुसलमानों की हालत क्या थी, कि कहाँ वो काफरों को भगा चुके थे, कहाँ अब ये था कि वही आके इनको पर टूट पड़े थे। इससे मुसलमानों में बड़ी बौखलाहट पैदा हो गई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 7 अंसार और 2 मुहाजरीन थे, क्योंकि भगदड़ मच गई ना। जब भी पैनिक की सिचुएशन होती है ना, मसलन कहीं आग लग जाए, कहीं ऐसा आप किसी को कोई इतला मिल जाए कि कोई कोई मसलन कोई किसी जगह पे पता चल जाए यहाँ पे बम रखा हुआ है, तो लोग कैसे भागते हैं, किसी को किसी का नहीं होश होता। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के पीछे से, सॉरी पहाड़ के पीछे से हज़रत खालिद बिन वलीद आए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मुसलमानों को आवाजें दे रहे हैं, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आ जाओ, लेकिन उस सारी जो भगदड़ मची हुई है उसके अंदर कौन सुन रहा था। और इस बात को काफरों ने सुन लिया, वो करीब थे, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमले शुरू कर दिए। उनकी ये कोशिश थी कि मुसलमानों के पहुंचने से पहले ही हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दें। उस मौके पे आपने फरमाया था, कौन है जो इनको मुझसे दूर कर दे, तो उसके लिए जन्नत है, या वो जन्नत में मेरा रफीक होगा। इस पर अंसारी जो थे, वो जो 7 अंसार थे, वो एक एक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके लड़ते रहे, लेकिन सातों के सातों शहीद हो गए। अब 2 कुरैश के मुहाजिर ये बाकी रहे थे, एक तलहा बिन उबैदुल्ला और एक साद बिन अबी वक्कास। तो अब मुशरिकीन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमले कर रहे थे, और यहाँ तक कि आपको एक पत्थर लगा जिससे आप पहलू के बल गिर गए, और आपका निचला जो दांत था वो टूट गया, निचला होंठ जख्मी हो गया। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सर पे जो हेलमेट था उससे वो उसकी जो कड़ियां थी वो चेहरे मुबारक में धंस गई, और कंधे पर भी तलवार की एक सख्त जर्ब लगी जिसकी तकलीफ एक महीने से भी ज्यादा आपको महसूस होती रही। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त डबल जीरा पहन रखी थी, इसलिए वो काट नहीं सकी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो दो कुरैशी भी सोचे लड़ रहे हैं, साद बिन अबी वक्कास और हजरत तलहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लड़ रहे हैं, और जाहिर है फिर भी उनका वो लोग इतने हैं कि उनका मुकाबला मुश्किल हो रहा था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन अबी वक्कास को तीर पकड़ा रहे थे, फरमाते चलाओ तुम पर मेरे माँ बाप फिदा हो। ये वाहिद सहाबी हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, तुम पे मेरे माँ बाप फिदा हो, वरना हर सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते थे कि या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। लेकिन इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उस वक्त हजरत तलहा बिन उबैदल्ला, उन्होंने उनकी उंगलियां जख्मी हो गई थी तो उनके मुंह से सी निकली थी, तो आपने फरमाया नहीं, अगर तुम बिस्मिल्ला कहते ना तो फरिश्ते तुम्हें उठा लेते और लोग देखते रहते। उस मुश्किल घड़ी में जिब्राईल अलैहि सलाम और मीकाईल अलैहि सलाम उतरे थे और उन्होंने भी आपका दिफा किया था। तो फिर कुछ मुसलमान भी पलट के वापस आए, जिनमें अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, अबू उबैदा बिन जर्राह थे, जिन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर जो कड़ियां थी चेहरा मुबारक में उनको निकाला था, जिससे उनका एक दांत भी टूट गया था। तो जिससे जब वो एक दांत टूट गया हुआ था, लोग बाद में देखते थे दूसरी कड़ी निकाली तो दूसरा दांत भी टूट गया, तो दो दांत मिसिंग थे उनके। जब भी लोग इनको देखते थे ना तो देख के वो ये कहते थे, ये दांत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कड़ियां निकालने के लिए ये दांत शहीद हुए। उस मौके पे वहां पे जिस वक्त मैदाने जंग में, उस वक्त जाहिर है जो लोग जमे हुए थे वो तो लड़ ही रहे थे, तो मुसा बिन उमेर के हाथ में झंडा था, उनको जब कुफार ने शहीद के कर दिया तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे। तो काफरों ने ये ऐलान कर दिया, चीख चीख के कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया, और ये खबर इतनी तेजी से फैली और इससे मुशरिकीन का दबाव तो कम हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि बस अब तो हमारा मकसद पूरा हो गया, अब इनको क्या मारना, अब तो खत्म है, ये इनके लीडर ही खत्म हो गए तो इनका क्या। और मुसलमानों के लेकिन जिस तरह से उनके हौसले टूट गए, क्योंकि उन्होंने कहा जब हमारे नबी ही नहीं रहे तो फिर हमारा क्या। और बाज ने ये कहा कि नहीं, जिस चीज पे उन्होंने जान दे दी तुम भी उस पे जान दे दो। तो ये उनके ऊपर इतना, जैसे समझ लिया कि गम का पहाड़ टूट गया था। ये लोग ऐसे नहीं, हमारी तरह के नहीं थे, सिर्फ जुबानों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले नहीं थे, ये वो लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का पानी जमीन पे नहीं पड़ने देते थे। जी हाँ, जमीन पे नहीं पड़ने देते थे, आगे लपक लपक के आपके वुजू का पानी लेते थे कि उससे अपने चेहरे पे मल लें। ये वो लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाने निछावर करने वाले थे। तो उस वक्त ये जो खबर फैली है इसने मुसलमानों के होश उड़ा दिए थे। अब उसी का कुछ जिक्र ये आयत जो आ रही है इसमें है। अब जिस वक्त ये हुआ कि ऐसी खबर फैली है, उस वक्त देखें आप ये समझ लें कि मुसलमानों के अंदर इस वक्त जो ये जंगे ओहद के लिए निकले थे, तीन ग्रोह थे। एक ग्रोह का तो आपको पता चल गया ना, जो मुनाफिकीन का था अब्दुल्ला बिन उबई के साथ, वो तो पहले ही वापस चला गया, 300 पीपल। अब जो 700 रह गए हैं ना, इनमें भी सब ऐसे नहीं थे जो खालिस पक्के ऐसे मुसलमान हो, इनमें भी आप दो ग्रोह समझें। एक ग्रोह उनका जो मुनाफिकीन कह सकते हैं या कमजोर मुसलमान कह सकते हैं, दूसरे थे जो पक्के डट के रहने वाले थे। ठीक है, तो इनमें भी दो ग्रोह थे। अब जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खबर फैली है, तो वो मौका था जिसमें के फिर जो काफिर थे, जो मुनाफिकीन या ये जो लोग कमजोर ईमान वाले थे,
वो उनमें एक ऐसी बदली और परेशानी पैदा हुई कि उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौत हो गए, तो अब वो फौत हो गए हैं, तो फिर अब हमें भी फिर वापस पलटना चाहिए भाई, हम भी जाएं। अब ऐसा करते हैं किसी तरह, अब्दुल्ला बिन उबई से कहते हैं कि वो जाके अबू सुफियान से कहे हमारे से दोस्ती कर ले और हम वापस उनके साथ मिल जाते हैं। मतलब फिर हमारा भी इस तरह रहने का क्या है, अब हमारा क्या बनेगा, हम तो इस तरह से आए थे इस दीन में, तो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दुनिया से चले गए, अब क्या करना। यानी उनके बिल्कुल उन्होंने हिम्मत हार दी, उन्होंने कहा हम वापस ही चलते हैं। ऐसे भी लोग थे। तो उस मौके पर अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी और इसमें बड़ी हिकमत थी, क्योंकि एक दिन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई फौत भी हो जाना था, उसके बाद तो वही आनी नहीं थी, तो इन मुसलमानों को उस वक्त के लिए भी तैयार कर दिया गया। वो मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले ये देखें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। लोगों याद रखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ नहीं है मगर एक रसूल ही है। क्या मतलब, वो खुदा नहीं बन गए, नऊज़ बिल्ला के। ये तुम सोचो कि उनको तो मौत ही नहीं आ सकती, और वो कैसे फौत हो गए, वो तो एक रसूल है, यानी एक इंसान है। इंसानों में सूरह कहफ के एंड में हम पढ़ते हैं ना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, कि आप कह दीजिए कि मैं इंसान ही हूं तुम्हारे जैसा। जैसे इंसानों को मौत आती है, इंसानों को भी तकलीफ पहुंचती है, इंसानों को भी दुख होता है, इंसानों को भी खुशी होती है, इंसान भी परेशान होता है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। बाज दफा ना लोग उनको सुपर नेचुरल समझ लेते, उनको क्या, वो तो अल्लाह के नबी थे, उनका क्या। नहीं, अल्लाह के नबी थे लेकिन वो इंसान ही थे, उनको भी जख्म लगा, उनको भी चोट लगी, उनका भी दिल भी दुखता था। ऐसे नहीं है कि उनको कुछ होता ही नहीं था, इसलिए उनके लिए तो माफ करना आसान है, हमारे लिए माफ करना मुश्किल है, हमें दर्द ज्यादा होता है। नहीं, तो वो भी कोई सुपर नेचुरल नहीं थे, इंसान थे। इसी में तो उनकी बड़ाई है कि वो इंसान थे इसके बावजूद उन्होंने माफ किया, वो इंसान थे इसके बावजूद उन्होंने जख्म खा के जाने दिया, इंसान थे इसके तो फिर उन्होंने इतनी तकलीफें उठा के सबर किया, वरना अगर उनको कोई तकलीफ ही नहीं होती तो फिर क्या बड़ी बात थी, फिर क्या उनकी काबिलियत होती। काबिलियत ही इस बात के ऊपर है कि उनको भी तुम्हारी तरह वो सब चीजें पेश आई, बल्कि हर एक इंसान से ज्यादा उनको तकलीफें पेश आई जिंदगी में, उनको मसाइल फेस करने पड़े, लेकिन फिर देखो वो कैसे थे। इसी में तो कमाल है। तो वो रसूल ही है, रसूल मतलब पैगाम रसा, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाले। कद खलत मिन कबले रसूल, उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं, वो भी इंसान ही थे, जैसे वो रसूल थे इसी तरह ये भी रसूल है, जैसे वो दुनिया में आए और दुनिया से चले गए इसी तरह ये भी दुनिया में आए और दुनिया से चले जाएंगे। अफा इम्माता, अब क्वेश्चन ये है, क्या फिर अगर माता वो मर जाए, औ कुतिला या वो कत्ल कर दिए जाए, ऐसे रसूल तो कत्ल नहीं होते मगर जैसे अब इस जंग के अंदर अफवाह फैल गई कि वो कत्ल कर दिए गए, तो क्या अगर वो कत्ल कर दिए जाए, अल्लाह ताला का सवाल है, इनकलबतुम अला अकाबिकुम, तुम क्या फिर जाओगे अपनी एड़ियों के बल। यानी एड़ियों के बल फिरना क्या होता है, कि लौट जाना, जहां से आए थे वहीं वापस चलेगा, उन्हीं फुटस्टेप्स पे वापस चलेगा। इतनी बात के अंदर हमने क्या सीखा, अफा इम्माता, कुरान में आयत होने के बावजूद लोग इस बात पे लड़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत नहीं आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए, आज तक ये मानने को तैयार नहीं है कि आप पे मौत तारी हुई है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते पीते नहीं थे, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां नहीं की, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नहीं हुई, जैसे तमाम इंसानों के साथ ये सारी चीजें, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए थे इस दुनिया में, तो जैसे बाकी इंसानों के साथ ये दुनिया की चीजें, हर इंसान होने के नाते जो उसके साथ बशरी तकाजे हैं वो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी थे, तो क्या मौत का आना उनके ऊपर क्या नामुमकिन था।
याद रखिए, हई और कयूम जात सिर्फ अल्लाह की है। अगर हम किसी और में भी मानते हैं कि फलां भी हई और कयूम है, अल्लाह ताला माफ करे, तो ये शिर्क हो गया। अपना अकीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही करने की ज़रूरत है। अपना सही अकीदा सही कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। और आप देखें, इस एक बात नोट करें, हमने पिछली दफ़ा ये बात पढ़ी थी ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि ये कौम कैसे फला पा सकती है जो अपने रसूल को जख्मी कर दे, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया आयत 128 में, लैसा लक मिनल अम्रि शैउन औ यतूबा अलैहिम औ युअद्दिबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून। ए नबी, आपका तो कोई इख्तियार नहीं है। हम सोचते हैं ना कि नबी अलैहिस्सलाम या रसूल जो मुंह से निकाले, अल्लाह ताला तो उसको टाल ही नहीं सकता। अल्लाह ताला नाउज़ु बिल्ला कोई मजबूर है उनकी बात एक्सेप्ट करने में। और बाज़ लोगों ने शेर बनाए हुए, खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता, नातों में ये बोल रहे होते हैं। कैसे आपने सोच लिया? कुरान आपको बताता है कि याद रखें, फाइनल अथॉरिटी अल्लाह सुबहाना हु ताला है, अल्लाह सुबहाना हु ताला है। अल्लाह की बराबरी कोई नहीं कर सकता, और अल्लाह को मजबूर कोई नहीं कर सकता, और अल्लाह किसी की मोहब्बत में मजबूर नहीं है। नबी जितने भी बुलंद हो जाएं, वो बंदा ही है, वो खुदा का बराबर नहीं हो सकता। ये जहन में रखें बात को। जब बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी फरमाई जो अल्लाह ताला को नहीं पसंद आई, अल्लाह ताला ने उसी वक्त फरमाया नहीं, लैसा लक मिनल अम्रि शैउ। ये नहीं कि अगर मेरे नबी ने कह दिया तो बस ठीक है, वो जो भी कहेगा वो बात मैंने माननी है, नहीं, अल्लाह मजबूर नहीं है। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला के पास इख्तियार है, जिसकी जो बात चाहे माने, जिसकी जो बात चाहे ना माने, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। और हम कई मिसालें इसमें देखते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए दुआ की थी, नहीं मानी गई, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए दुआ की थी, आगे सूरह मायदा में आता है, अल्लाह मुझे इस कौम से जुदा कर दे, नहीं, अल्लाह ने किया। हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो बात उन्होंने मुंह से निकाली वो वैसे ही होनी है और अल्लाह ने करनी है वैसे ही, नहीं, अल्लाह की मर्जी है वो करे, वो अल्लाह के महबूब है, लेकिन अल्लाह की मर्जी है कि वो करे या ना करे। इस बात को समझ ले। तो अगर वो फौत हो जाते हैं या वो कत्ल कर दिए जाते हैं, तो तुम क्या वापस चले जाओगे? जिस तरफ से, जिस रास्ते से आए हो, क्या उसके ऊपर वापस लौट जाओगे? अब ये कितनी बड़ी एक बात है समझने की। इसलिए कि आप देखें, पहले इस बात को समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा कितना बड़ा था सहाबा कराम की जिंदगी में। उनके लिए तो समझ ले ऐसे था जैसे कयामत आ गई है, यानी कोई कयामत से कम नहीं थी ये बात। ये मैं आपको बताऊं कि उनके लिए ऐसे ही था कि कयामत आ चुकी है। अब कयामत आ गई है, उनकी जिंदगियों में इससे बड़ा कोई हादसा नहीं हो सकता। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते ना कि मेरे सबसे मेरी जिंदगी का 100 साल से भी ऊपर वो जिए थे, तो कहते हैं मेरी पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन वो था जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। क्योंकि ये तो अंसार सहाबा में से है ना, और सबसे कबीर दिन, सबसे डार्क दिन मेरी जिंदगी का वो था जिसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ लेकर गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए थे। तो वो कहते हैं नहीं, ऐसे ना कहो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए हैं, वो तो ये तुम उनके शान में गुस्ताखी कर रहे हो। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो फौत हो, तो फिर कोई कैसे कह सकता है? अल्लाह अकबर। तो हम देखते हैं यहाँ पे इस बात को कि सहाबा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ लें सब कुछ थे उनका, उनके माँ बाप की जगह, उनके हर रिश्ते से ज्यादा बढ़ के थे। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा गम ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या चीज ट्रेड की कि देखो, तुम्हारा दीन किसी शख्सियत के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि वो होगा तो हम दीन पे हैं, अगर वो नहीं तो छोड़ो दीन को। अब ये नहीं होना चाहिए, समझ आए? आपका दीन इस पे नहीं डिपेंड करना चाहिए कि अगर हमारी जिंदगी में कोई कयामत बरपा होगी, जैसे मैंने बताया कि उनके लिए तो कयामत थी, यानी कोई अल्लाह ताला माफ करे कि जिंदगी में इतनी बड़ा कोई गम आ गया, जैसे अब इनकी जिंदगी में इतना बड़ा गम था ये, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप दीन को छोड़ जाएं। एक ईमेल मुझे किसी की आई और उन्होंने कहा कि उनके ऊपर इतना ज्यादा गम, इतनी ज्यादा परेशानियां आई हैं कि वो अब ये सोच रही हैं कि वो दीन बदल लें। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि दीन बदलने से क्या आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी? तो बाज गम जो होते हैं ना, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि फकर से पनाह मांगो, फकर के से पनाह मांगने की दुआ भी है, क्योंकि बाज फकर भी इंसान को मोहताजी, फकीरी, यानी इंसान इस नहज पे पहुंच जाता है कि वो कुफर तक आ जाता है, कुफर तक कर लेता है। फकर इतनी ऐसी चीज है। तो बाज गम भी ऐसे हैं कि इंसान उनके अंदर ऐसे वो होता है और शैतान को मौका मिल जाता है। फिर देखा, अगर अल्लाह ताला इतना ही तो उसको तुम्हारा ख्याल होता तो तुम्हारे पर ये क्यों डालता? तो देखा, अल्लाह को तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है, उसको तुम्हारी कोई केयर नहीं है, छोड़ो ऐसे दीन को। तो अब आप देखें, यहां से हमें ये लेसन मिलता है कि कोई दुनिया में कितना ही बड़ा भूचाल आ जाए हमारी जिंदगियों में, अल्लाह माफ करे, कोई भी चीज हो जाए, दीन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। क्या तुम पलट जाओगे अपनी एड़ियों के बल? आप ये आयत में, यहां तक में अपने लिए रख के देखें, अपना जो भी आपका कोई मसला है अपना मसला लिखें, यानी कलब तुम अला आकाबिकुम से पहले तक अपना मसला लिखेंगे, ये हुआ या ये मेरे साथ हो गया, तो क्या तुम इसकी बेसिस पे, यानी कलब तुम अला आकाबिकुम, और फिर आगे पढ़ें, जिस मसले में भी है आप दीन से बदजन हो जाएंगे, अल्लाह ताला के बारे में आपके दिल में बदगुमानी आ जाएगी, उसके बारे में शकुक व शुभात करने लगेंगे। तो हमें बताया गया कि वा मई यनकलिब अला अकिबैही यदुर अल्लाह शैया, तो नहीं नुकसान देगा अल्लाह को कुछ भी, जो कोई फिरता है ना फिरे, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। आपको मैं पहले भी वो हदीसे कुदसी बताई हुई है, अगर तमाम जिन इंस औरतें मर्द बच्चे बूढ़े कयामत तक आने वाले अव्वल से आखिर तक सारे भी ऐसे हो जाएं जैसे सबसे ज्यादा नाफरमान कोई, यानी शैतान के दिल की तरह अल्लाह माफ करे, हो जाए, तो तब भी अल्लाह की बादशाहत में एक जर्रे बराबर भी फर्क नहीं आता। तुम दीन छोड़ना है, छोड़ दो, अल्लाह ताला को इससे क्या, तुम अल्लाह को थ्रेट करते हो कि मैं तो दीन छोड़ के चल जाऊंगी, मैं तो अल्लाह से नाराज हूं, अस्तगफिरुल्लाह। इस वक्त में इंसान को अपना मुहासबा करना चाहिए, ना कि वो दीन से बदजन होने शुरू हो जाए। तो अगर कोई किसी मसले पे भी आप देखेंगे, बाज दफा लोग छोटी छोटी बातों पे कहने लगते हैं, हमारे हमें ये ग्रुप लीडर नहीं ना मिली, हमने नहीं पढ़ना, अब हम नहीं, अब हम कोर्स छोड़ रहे हैं। तो भाई किसी का क्या नुकसान करो, हमारा तो बिल्कुल ही कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हमारे पास तो कौन से, हम आपसे फीसें लेते हैं कि जो हमारे कोई कमी हो जाएगी, कोई कम नुकसान नहीं, हमने आपसे क्या लेना है, किसका नुकसान होगा, अपना ही होगा ना। तो जो ऐसा करता है वो अपना नुकसान करता है। कोई लोग कहने लगते हैं, अगर आपने हमारी ये बात नहीं ना मानी तो फिर हम छोड़ जाएंगे, तो भाई हमें किस बात की धमकी? आप खुद देखो कि आपको, आप कितनी बड़ी खैर से महरूम हो जाओगे। तो अपने आप को डिपेंडेंट ना करें, और ये मेरी ग्रुप इंचार्ज, जो मैं इस ग्रुप में होंगी तो मैं पढ़ूंगी, मैं तो पढ़ ही नहीं सकती इसके बगैर, मैं तो इतनी अटैच हो गई हूं इनके साथ। नो, कोई जात, चाहे मैं हूं चाहे कोई ग्रुप इंचार्ज है, हम सब फानी है, मर जाना एक दिन। अब मसलन कल में नहीं होती तो क्या होगा, आप कुरान छोड़ देंगे? नहीं, इंसान है ये, जितने मर्जी हम किसी के साथ अटैच हो जाएं, जितनी मर्जी हमें किसी साथ मोहब्बत हो जाए, मगर हमारा दीन इंसानों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, उस हई और कयूम जात को देखें। और इस बात से मैंने आपको जो बताया कि देखिए अल्लाह ताला की कितनी बड़ी हिकमत थी, अल्लाह को पता था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई में फौत होंगे, अभी तो अफवाह थी सिर्फ, जब वाकई में फौत होंगे तो फिर मुसलमानों को तसल्ली चाहिए होगी। तो बुखारी शरीफ में यह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर सुन के मुसलमानों में तो एकदम इतनी
यानी एकदम एक जाहिरा गम का पहाड़ टूट गया उनके ऊपर। हजरत उमर का हाल ये था कि वो तलवार लेके खड़े हो गए। उन्होंने कहा वो गम उनको इतना ज्यादा कि उन्होंने कहा अगर किसी ने कहा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। यानी इतने ज्यादा वो जज्बाती इस चीज के अंदर थे। अच्छा अब अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अपने घर में थे। उनका घर थोड़ा सा हटके था बाहर की तरफ। तो वो उनको खबर मिली वो जल्दी से घोड़े पे सवार होके तशरीफ लाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के हुजरे में गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चादर आपको उड़ा दी गई थी। मेरे लिए हमेशा ये बहुत इमोशनल होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो चादर थी उसका कोना चेहरा मुबारक से हटा के उनका बोसा लिया और रो दिए। फरमाने लगे मेरे माँ बाप आप पे फिदा हूँ अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आप पर दो मौतें कभी जमा नहीं करेगा। जो मौत आप पे लिख दी गई है वो आपको आ चुकी है। इसके बाद कोई मौत नहीं। सोचेंगे वो जिनका तो जीना मरना आपके साथ था जिनके दिन रात आपके साथ गुजरते थे जो आपको देखते थे तो खुश होते थे जिनकी जिंदगी थे आप मैंने किसी को किसी के साथ भी आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत है ना समझें उसको इमेजिन करें और समझें कि उससे कहीं ज्यादा मोहब्बती सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से चले जाना उनके लिए क्या उनके दिलों पे गुजरी होगी। इसके बाद वो मस्जिद में तशरीफ लाए और आके हज़रत उमर से फरमाया कि आप चुप हो जाएं आप खामोश हो जाएं। उनको खामोश करने की कोशिश की वो नहीं सुन रहे थे। तो फिर खुद खड़े हुए और उन्होंने ऐसी बात की फरमाया जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो समझ ले कि वो फौत हो गए और जो अल्लाह की इबादत करता था वो खुश हो जाए कि अल्लाह हई है क्यूम है उस पर कोई मौत नहीं आनी। फिर उन्होंने यही आयत तिलावत फरमाई। तो जब उन्होंने ये आयत तिलावत फरमाई ना देखिए हम सब इंसान है ना कभी कुरान पढ़ने वाले को भी याद नहीं रहता कभी कोई गम आता है या कोई ऐसी मुश्किल आती है तो कोई और याद करा दे उसको। अब सारे सहाबा थे क्या वो नहीं कुरान पढ़ते थे पहले लेकिन वो कहते हैं हमें ऐसे लग रहा था ये आयत अभी उतरी है ये आज उतरी है। सबको ये याद आ गई और उसके बाद तो हर बंदे की जुबान पे ये आयत ऐसी थी कि जो जिधर जा रहा था वो बस यही आयत पढ़ रहा था। और जिस वक्त हजरत उमर ने ये बात सुनी है बस उस वक्त फिर उनको यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके हैं। फिर तो उनके ऐसे था कि पैरों तले से जमीन ही निकल गई। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने उसके बाद जितना अरसा जिंदा रहे तो उसमें उनके लिए तो यही था कि कौन सा वक्त ऐसा होगा कि मैं अपने साथी से जा मिलूं। और हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही फरमाते थे कि ना हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत पर मुर्तद हूं ना आपकी शहादत पर। अल्लाह की कसम अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल किए जाएं तो हम भी इस दीन पर मर मिटे जिस पर आप शहीद हुए है वो तो उनकी जिंदगी में ये फरमाया करते थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उसके बाद बहुत सारे लोग आपको पता है ना कि मुर्तद हो गए थे। ये जो फितना इर्तदाद हुआ था बड़ा फितना था कि उन्होंने कहा कि अब क्या कोई कईयों ने झूठी नबूवत के ही दावे कर दिए जिनमें एक मुसलमान का जाब था। तो ऐसा होता है। अरे यहीं पे पता चल जाता है कि खरा कौन है और खोटा कौन है। यहीं पता चल जाता है कि कौन है वाकई जो इस दीन के ऊपर और पे सच्चा था पक्का था मर मिटने वाला था और कौन थे भगोड़े थे बस। तो ये दीन इंसानों के ऊपर ना बेस करें। ये दीन जो है ये हम अल्लाह वहदहू ला शरीक के ऊपर ईमान जब लाते हैं और हर रसूल यही पैगाम देने के लिए दुनिया में आया उसको छोड़ के और किसी शख्सियत के साथ चिमट जाए ये नहीं है मकसद। वो जिस मकसद के लिए आए इस पैगाम को देने के लिए इस पैगाम को अगर दिल में रासिख ही नहीं किया इसका यकीन ही दिल में नहीं बैठा बस शख्सियतों से जुड़ते रहे तो क्या पाया। तो शख्सियतें कोई माने नहीं रखती, चाहे वो कोई टीचर हो आपके, चाहे वो कोई औलिया अल्लाह में से कोई हो, अब रसूल तो कोई नहीं, लेकिन चाहे वो कोई आपकी पसंदीदा शख्सियत हो, आप बस उसी से उसको सुनना या उसको उसके साथ ही बस अटैच होने को पसंद करते हो, मगर इसके ऊपर हमारा दीन नहीं डिपेंड कर सकता। मोहब्बतें हो सकती हैं, ये अल्लाह की खातिर मोहब्बतें होती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने मोहब्बत की, अल्लाह वालों से मोहब्बत होनी चाहिए, मगर ये मोहब्बत ऐसी ना हो कि वो नहीं है तो बस हम गए अब काम से, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सबसे ऊपर वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बड़े शदीद होते हैं, उनमें सबसे ऊपर उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, और यही तो सिखाने के लिए रसूल आए। अब अल्लाह की मोहब्बत ही पीछे हो जाए तो फिर क्या? तो ये हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है अगर कोई ऐसा करता है। वह सैयद जजिल्लाहु शाकिरीन, अन करीब अल्लाह जजा देगा शुक्र करने वालों को। शुक्र करने वालों को यहाँ पे क्या ताल्लुक आ गया? शुक्र यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत इस दीन की दी है, जो इस दीन को अपनाए रखेंगे, जो इस दीन पे साबित कदम रहेंगे, उन्होंने वाकई शुक्रगुजारी का हक अदा किया ना, वो ही शुक्रगुजार हुए ना। शुक्रगुजार तो वो है जो अल्लाह की नेमत को पहचान ले, उसकी कदर करे। ये थोड़ी है कि ये शुक्रगुजारी थोड़ी कि आज अल्लाह की दी हुई नेमत के ऊपर चले, कल को उसको साइड पे किया और कहीं और चल पड़े, नहीं। तो दीन इस्लाम के वाकई जो कदरदानी करने वाले, इसी के ऊपर चलने वाले, उन्होंने वाकई शुक्रगुजारी की इस दीन की, तो अल्लाह उनको इसका अजर देगा। तुम्हें तो इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने नबी भेजा था कि वो तुम्हें हिदायत की तरफ बुलाए, तो वो जरिया थे, तब तुम इस दीन की कदर करते हुए इसके ऊपर चलो।